प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन नए मित्रों का जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इसराइल से कहता है कि उसने उन्हें याकूब से उत्पन्न किया, उनको मिस्र से निकाला, गहरे जल से उनके साथ रहकर उन्हें पार करवाया, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। ये सारी बातों को हमने देखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यशाया 43 अध्याय से देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। पिताजी, आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। आज के इस अध्ययन पर भी अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और यशाया की पुस्तक 43 अध्याय उसके 5 और 6 पद से हम पढ़ेंगे। यशाया 43 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख, मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। मेरे मित्रों, परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि वह इसराइल को फिर एकत्र करेगा। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसके 10 पद में वह इसकी पुष्टि करता है, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो, कहो जिसने इसराइलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहे अपने झुंड की करता है। परमेश्वर कहता है, हे जाति जाति के लोगों, परमेश्वर का वचन सुनो। दूसरे शब्दों में वह कहता है, हे संशयवादियों, इसराइल से मेरा प्रयोजन समाप्त करने वालों, सुनो, इसराइल से मेरा प्रयोजन समाप्त नहीं हुआ है, हमें उसकी वाणी सुनना है। संसार की परिस्थितियां कैसी भी हो, परमेश्वर कहता है कि उसने इसराइल को फिर से इकट्ठा करने का विचार किया है। जी हां, यह उसका वचन है। यशाया 43 उसके 10 पद में लिखा है, यहोवा की वाणी है, तू मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के बराबर और कोई नहीं है, वही एकमात्र परमेश्वर है, वही एकमात्र है जो इस अद्वितीय स्थिति का स्वामी है। यशाया 43 के 11 पद में लिखा है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। ध्यान दीजिए, यह एक रोचक बात है कि विश्व के सब धर्मों में केवल मसीही धर्म उद्धार का दावा करता है। मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसा आपसे कह रहा हूं, क्योंकि वचन में लिखा है। अन्य धर्म एक कार्यकलाप प्रस्तुत करते हैं, उद्धार नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे बिना उद्धार नहीं। अब वह मूर्ति पूजा के विषय में भी चर्चा करता है। यशाया के पुस्तक 43 अध्याय के 12 पद में लिखा है, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है जब तक तुम मूर्ति पूजा नहीं करोगे या मुझे दूर रखने वाली बातों में नहीं पड़ोगे, तब तक मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। भविष्य अर्थात भावी दंड, मुक्ति, इसराइल का उद्धार, हम इन बातों को देखते हैं। यशाया 43 अध्याय के 13 पद में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा, जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं बच सकता, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, उसकी पहुंच से बाहर कोई नहीं है। यशाया 43 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा छुड़ाने वाला और इसराइल का पवित्र यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कसदियों को भी उन्हीं के जहाजों पर चढ़ाकर ले आऊंगा, जिनके विषय वे बड़ा बोल बोलते हैं। बेबीलोन के विनाश की यह भविष्यवाणी है। तब हम आगे पढ़ते हैं यशाया 43 के 15 पद में, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इसराइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूं। निसंदेह चर्चा का यह विषय इसराइल ही है। परमेश्वर उन्हें अस्तित्व में लाने का उत्तरदायित्व तो उठाता है। प्रत्येक यहूदी विरोधी इस पर ध्यान दे, परमेश्वर उनका राजा है। यह प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का एक और प्रमाण है, क्योंकि वह उनका राजा है। जब यीशु इस पृथ्वी पर था और अपने राजा होने का दावा करता था, तब इसराइल जानता था कि वह इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ का दावा कर रहा है। दीक्षित इसराइल इस बात को समझता था। मित्रों, हमने देखा है कि परमेश्वर इसराइल का दावेदार है, क्योंकि उसी ने उसकी रचना की है। अब वह कहता है कि जंगली जंतु भी उसकी महिमा करेंगे। यशाया 43 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे विचार में प्राणी जगत मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर का अधिक बोध रखते हैं। मनुष्य तो पाप में गिर गया है। यशाया 43 उसके 25 पद में लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें क्षमा करने की इच्छा रखता है, जैसे उसने हमें क्षमा कर दिया है। यशाया के पुस्तक 43 अध्याय के 27 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच विचवई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। मेरे प्रियो, यह स्पष्ट रूप से अब्राहम के बारे में है। निसंदेह धर्मशास्त्र में उसकी भूल चूक का उल्लेख है। एक उदाहरण है कि उसने फिरौन से कहा था कि सारा उसकी बहन है। बिचवई अर्थात शिक्षक, वे जो परमेश्वर की व्याख्या प्रजा को समझाते थे, उनमें भी पाप एवं दोष थे। और उदाहरण के रूप में हम देखते हैं शिमशोन, शमूएल और दाऊद। यशाया की पुस्तक 43 अध्याय उसके 28 पद में आगे लिखा हुआ है, इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया, मैंने याकूब का सत्यानाश और इसराइल को निंदित होने दिया है। आज इसराइल की यही दशा है, उनमें आज शांति नहीं है, क्योंकि वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परंतु यह उनकी अंतिम दशा नहीं होगी। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 43 समाप्त होता है और हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 44 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 44 में भी अध्याय 43 का ही विचार चल रहा है, जबकि पिछली अध्याय आने वाले दंड के शोकपूर्ण उल्लेख के साथ समाप्त होता है। यह अध्याय भावी राज्य और पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की ज्योति की ओर बढ़ रहा है। इस अध्याय में मूर्ति पूजा की कटु आलोचना की गई है। इस विशेष अंश का यह बार बार उठने वाला विषय है, मनुष्य का मन किसी न किसी प्रकार परमेश्वर से हटकर मूर्ति की ओर चला जाता ही है। आज हम गढ़ी हुई मूर्तियों के पीछे तो नहीं भागते हैं, परंतु मनुष्य जीवित परमेश्वर के स्थान पर जिस वस्तु को रख दे वही उसके लिए मूर्ति है। यह नौकरी हो सकती है, धनोपार्जन हो सकता है, पद प्रतिष्ठा की खोज हो सकती है, सुख विलास, यौनाचार, शराब, आत्मसम्मान, व्यापार आदि सब हो सकते हैं। मूर्ति पूजा पर विवाद की पराकाष्ठा अध्याय 46 में होगी। वहां हमें इस विषय पर परमेश्वर और मूर्तियों में वास्तविक अंतर परखने का अवसर प्राप्त होगा। तो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे आत्मा की प्रतिज्ञा। परमेश्वर इसराइल को अपना चुना हुआ कहता है और उसे अपनी सहायता का आश्वासन दिलाता है और पवित्र आत्मा की एक अद्भुत भविष्यवाणी भी करता है। आइए हम पढ़ें यशाया 44 अध्याय उसका 3 पद। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मेरे विचार में यह पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का संदर्भ है, जो यूएल नबी के पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 से 32 पद के तुल्य है। यूएल की भविष्यवाणी को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो स्पष्ट होगा कि यह भविष्यवाणी पेंतिकोस्त के दिन पूरी नहीं हुई है। जी हाँ, इसका संदर्भ देते समय पत्रस ने 2 बातें कही थी। पहली, यह वह बात है। उसने यह नहीं कहा कि यह भविष्यवाणी की पूर्ति है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 16 पद में आप देख सकते हैं, वहां उपस्थित जन अन्य भाषाओं के कारण शिष्यों का ठड्ढा कर रहे थे। शिष्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर के महान कार्य की चर्चा कर रहे थे, जिसे हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 11 पद में देखते हैं, परंतु श्रोता उन्हें अधिक शराब पीने का दोष दे रहे थे। इसे हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 13 पद में पाते हैं। अतः पत्रस ने कहा, आश्चर्य मत करो क्योंकि यह वह बात है जो अंत समय में पूरी होगी। अब आप कैसे जानेंगे कि यह पेंतिकोस्त के दिन पूरी नहीं हुई? पहली बात, यूएल ने कहा था 2 अध्याय उसके 30 और 31 पद में, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा, सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। पेंतिकोस्त के दिन ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी बात, प्रेरितों के काम के वृतांत में सब लोगों पर आत्मा नहीं उतरा था, जबकि यूएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रेरितों के काम के वृतांत में केवल 120 प्रेरित थे। इसके पश्चात 3000 विश्वासी हुए। आज 2000 वर्ष बाद भी सब प्राणियों पर आत्मा उंडेला नहीं गया है। मेरे प्रियो, उस समय यरूशलेम में लगभग 5 से 10 लाख मनुष्य थे। किसी भी प्रकार की कल्पना से हम यह नहीं कह सकते कि यूएल की भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई। यूएल की भविष्यवाणी की पूर्णता अभी भावी घटना है। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि परमेश्वर के महान दिन भविष्य की बात है। तो हम देखेंगे मूर्ति पूजा पर विवाद। पद 9 से 20 में मूर्ति पूजा के विरुद्ध बुद्धिमानी का विवाद है। यशाया इस विषय पर अत्यधिक प्रबल विरोध प्रकट करता है। वे जो मूर्तियां बनाते हैं वे अपने देवताओं के निर्बुद्धि चरित्र के स्वयं ही जीते जागते उदाहरण है। मूर्ति में तो मनुष्य के समान 5 इंद्रियां भी नहीं है। मूर्ति न तो सुनती है, न बोलती है, न देखती है, न सूंघती है और न ही अनुमति कर सकती है। पौलुस कहता है कि वे कुछ नहीं है, वे किसी की सहायता नहीं कर सकती। हम यशाया के पुस्तक 44 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? यशाया एक प्रश्न पूछता है, तुम मूर्ति गढ़ने के समय क्यों गंवाते हो? तुम्हें लज्जा आना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम परमेश्वर की रचना नहीं कर सकते, परमेश्वर ने तुम्हारी रचना की है, न कि तुम परमेश्वर की रचना कर सकते हो। जी हाँ, अब वह मूर्ति बनाने के काम का वर्णन करता है, यशाया की पुस्तक 44 अध्याय उसके 12 पद में। लोहार एक बसुला अंगारों में बनाता है और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है, वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। मूर्तिकार परिश्रम करके अपने देवता की मूर्ति गढ़ता है, परंतु उसका परिश्रम उसे थका देता है और स्पष्ट हो जाता है कि वह मनुष्य ही है। अपना श्रम, समय, पैसा, प्रतिभा लगाकर वह मूर्ति बनाता है, परंतु उसे क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं। उसे एक सुंदर सी छोटी सी कुछ नहीं मिलता है। मानव निर्मित देवता का आरंभ जंगल में होता है, परंतु जिस पेड़ की लकड़ी से वह मूर्ति बनाता है, उस पेड़ का सृजनहार परमेश्वर है। केवल परमेश्वर ही पेड़ की सृष्टि कर सकता है। मेरे मित्रों, यह निश्चय ही मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है। यशाया 44 अध्याय के 15 पद में लिखा है, तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है, वह उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है, उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है, वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। मेरे प्रियो, उस देवता की मूर्ति के बचे हुए टुकड़ों से मनुष्य आग जलाकर अपने आप को गर्म करता है और खाना पकाता है। एक देवता बनाने से बस यही एक लाभ है, उसके बचे हुए टुकड़े अर्थात लकड़ी के टुकड़े तो किसी काम के आ जाते हैं, परंतु वह मूर्ति किसी काम की नहीं। वह आपको गर्मी नहीं दे सकती, वह आपका खाना पकाने में सहायता नहीं कर सकती है, वह आपकी सहायता नहीं कर सकती, वह आपको मोक्ष उद्धार नहीं दिला सकती। परमेश्वर इसराइल को बोध करवाना चाहता है कि मूर्तियां कैसी व्यर्थ की बातें हैं जो उनके जीवन के लिए लाभ उत्पन्न नहीं करती। मेरे मित्रों, हम अनेक बातों में व्यस्त हो जाते हैं, परंतु वे हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। वे हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती, वे हमें उबारती नहीं, वे हमें आनंद प्रदान नहीं करती हैं, और यह सच है कि वे हमें उद्धार भी नहीं दिला सकती। हम आगे देखेंगे कुस्रू की भविष्यवाणी। यशाया की पुस्तक 44 अध्याय उसके 48 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कुस्रू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। मेरे मित्रों, यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि यह पद अगले अध्याय का है। कुस्रू के बारे में यह भविष्यवाणी बड़ी ही असाधारण बात है। उसके जन्म से 200 वर्ष पूर्व ही उसका नाम बता दिया गया है। परमेश्वर उसे अपना ठहराया हुआ चरवाहा कहता है। धर्मशास्त्र में केवल यही एक राजा है जिसे यह पद दिया गया है। अगले अध्याय में इसकी विस्तृत चर्चा को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि अध्याय 44 समाप्त होता है और अध्याय 45 में हम आते हैं, जिसका विषय है कुस्रू के जन्म से पूर्व उसकी बुलाहट, जगत की रचना, इसराइली की निरंतरता। मेरे प्रियो, इस अध्याय का विषय पिछले अध्याय से ही जुड़ा हुआ है। पिछला अध्याय कुस्रू के उल्लेख से अंत हुआ था और यह अध्याय कुस्रू के ही उल्लेख से आरंभ होता है। दुर्भाग्य से पिछले अध्याय का अंतिम पद इस अध्याय के प्रथम पद में नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह ज्ञात है कि अध्याय और पद विभाजन मनुष्य का काम है। एक मसीही भिक्षुक, यह एक कहानी है, ध्यान दीजिए, गधे पर बैठकर एल्प्स पर्वत की ओर यात्रा में निकल गया। जब जब उसका गधा रुकता, वह अपनी कलम निकालकर धर्मशास्त्र में अध्याय समापन का चिन्ह डाल देता। यह एक हास्य कथा तो है, परंतु कहीं ऐसा लगता है कि यह सच है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गधे ही ने विभाजन किया। अतः मैं अध्याय 44 के पद 28 से फिर से आरंभ करता हूं आप देखिए यशाया 44 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, जो कुसरू के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। क्योंकि कुसरू की पहचान वरन नाम भी 200 वर्ष पूर्व दिए गए हैं। इस कारण आलोचकों ने एक अज्ञात लेखक की कल्पना की कि इसका लेखक हुआ है। अविश्वासी के दुर्बल विश्वास के लिए यशाया द्वारा किसी का नाम 200 वर्ष पूर्व कहना बुद्धि से परे है। अब प्रश्न यह है कि कुसरू को ही क्यों जन्म से 200 वर्ष पूर्व इस प्रकार व्यक्त किया गया है। मेरे विचार में इसके तीन कारण हैं। प्रमुख कारण तो यह है कि उसे पहचाना जाए कि जब वह दृश्य में प्रकट हो तो यशाया की बात पर किसी प्रकार की शंका ना हो कि उसने इसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की थी। दूसरी बात यह है कि कुसरू ही वह राजा होगा जो इसराइल के स्वदेश लौटने की आज्ञा निकालेगा। और तीसरा कारण कि यशाया ने परमेश्वर के प्रकाशन द्वारा कुसरू का नाम लिया है, यह है कि भविष्यवाणी की प्रामाणिकता सिद्ध हो, क्योंकि उसने 700 वर्ष बाद इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है कि कुंवारी से जन्म लेने की भी भविष्यवाणी की थी। एक दीक्षित इसराइली को तो इस भविष्यवाणी के आधार पर प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार रहना था। मेरे प्रियो ध्यान दे, परमेश्वर कुसरू को अपना चरवाहा कहता है, वह यह भी कहता है कि वह मेरी इच्छा पूरी करेगा और यरूशलेम का पुनरुद्वार करेगा। स्मरण रखें कि परमेश्वर ने अशुरों को साधन बनाकर उत्तरी राज्य इसराइल को बंधुआई में भेजा था। इसके पश्चात उसने बेबीलोन को साधन बनाकर दक्षिणी राज्य यहूदा को बंधुआई में भेजा। परंतु कुसरू एक भिन्न साधन है, परमेश्वर उसे अपना चरवाहा कहता है जो उसकी इच्छा को पूरी करेगा। मेरे विचार में जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हमारे लिए वहां दो आश्चर्य होंगे। पहला, वे लोग जिनके लिए हमने कभी सोचा ही नहीं था वे वहां होंगे, और मेरे विचार में कुसरू भी वहां होगा। दूसरा, जिनके बारे में हम पूर्ण रूपेण आश्वस्त हैं कि वे वहां होंगे, वे वहां दिखाई नहीं देंगे। मेरे प्रियो, हमारे वहां होने का एक ही कारण है, प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है। यह ध्यान देने योग्य एक रोचक बात है कि परमेश्वर कहता है मेरी इच्छा पूरी करेगा। सन्हेरीब और नबूकदनेज़र ने भी इसराइलियों को उत्तर और दक्षिण राज्य में बंधुआई में ले जाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी की थी, परंतु कुसरू परमेश्वर की इच्छा भिन्न रूप से पूरी करेगा, अर्थात बंधुआई से छुटकारे की आज्ञा देगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज यह स्पष्ट है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए किसी को भी प्रयोग में ले सकता है। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको भी बचा सकता है, आपके पापों से छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वह कहता है कि मैं फिर से उन्हें वापस ले आऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु पर विश्वास करें और उसकी निकटता में रहें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, रूहे खुदा का प्यार मिला है। है